आज है 10 जुलाई दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और मुंबई हमलों की सुनवाई में तेजी लाने पर हुई सहमति।
Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial.
कर्ज संकट से उबरने के लिए ग्रीस के नए प्रस्तावों का फ्रांस और इटली ने किया स्वागत। निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की 90वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद करेंगे रेहान फजल आज की विवेचना में।
छोटा छोटा सा ढाबा रहता था, वहाँ से भजिया लेते थे, चाय पीते थे और जलेबी खाते थे। उनके पहले लव लेटर्स एक्सचेंज करते थे मैं। आई यूज्ड टू डिलीवर माटुंगा।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जाने का न्योता स्वीकार कर लिया है। अगले साल वे सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। मोदी और नवाज शरीफ के बीच सालाना सम्मेलन शुरू होने से पहले रूस में आज मुलाकात हुई। इसमें 26/11 हमलों की सुनवाई में तेजी लाने पर भी सहमति बनी है। ग्रीस की सरकार में एक सुधार कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के सामने इसे पेश कर दिया है। माना जा रहा है कि इन सुधारों में करों में बढ़ोतरी और पेंशन में बदलाव शामिल हैं, जिसके बाद फ्रांस और इटली ने ग्रीस के इस सुधार कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसका स्वागत किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने ग्रीस की योजना को गंभीर और विश्वसनीय करार दिया है। हालांकि जर्मनी का कहना है कि इस योजना में अभी भी कई संभावनाएं बाकी हैं। पोप फ्रांसिस ने बोलीविया में लोगों को संबोधित करते हुए कैथोलिक गिरजाघरों की तरफ से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि बोलीविया में अमेरिका ने विजय और उपनिवेशीकरण के दौरान यहां के लोगों पर जो जुल्म किए वो गलत थे। उन्होंने कहा,
Y también yo quiero decirlo, al igual que mi predecesor, San Juan Pablo,
मेरे पूर्वाधिकारी जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था और मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको भगवान के सामने जाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। यह माफ़ी केवल गिरजाघरों की गलतियों की नहीं बल्कि उन अपराधों की है जो इस देश के लोगों के खिलाफ किए गए। पोप फ्रांसिस के शब्द। पोप फ्रांसिस ने बोलीविया के सांताक्रूस में लोकप्रिय आंदोलनों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बचत कार्यक्रमों पर जोर देने की नव उपनिवेशवादी नीति की आलोचना की और साथ ही समाज के निचले तबके से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बदलने की मांग उठाई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाए जाने की ज़रूरत है। हैमंड ने कहा कि पश्चिमी देशों के नेता एक समझौते के विवरण का अगले 12 घंटे तक अध्ययन करेंगे। वहीं ईरान का कहना है कि यह वार्ता आने वाले कुछ और दिनों तक खिंच सकती है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ ने कहा कि दूसरे पक्ष ने अपनी शर्तों में तब्दीलियाँ कर दी, जिसकी वजह से देर लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय राहतकर्मी यमन में रमज़ान के महीने के अंत तक चलने वाले युद्ध विराम का फ़ायदा स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि उसने 2 जहाज़ भरकर वहां के लोगों को राहत सामग्री भिजवाने का इंतजाम किया है। यह जहाज़ अदन के बंदरगाह पर खड़े हैं और जल्दी ही इन्हें रवाना किया जाएगा। यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़पों के चलते यमन में अब तक 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। श्रीहरिकोटा स्थित भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि इसरो व्यावसायिक मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो शुक्रवार रात को ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट के जरिए ब्रिटेन के 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। रूस के शहर उफा में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और 26/11 मुंबई हमलों की सुनवाई में तेजी लाने पर सहमति बनाई। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री दक्षिण एशिया के में चरमपंथ से निपटने के लिए सहयोग करने पर भी सहमत हो गए हैं। उफा में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। दोनों देशों के साझा वक्तव्य पर जानकारी देते हुए पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने कहा,
लीडर्स एक्सचेंज व्यूज ऑन इश्यूज ऑफ बायलैटरल एंड रीजनल इंटरेस्ट।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने माना कि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की साझा जिम्मेदारी है और इसके तहत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए वे तैयार हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि वे हर तरह से चरमपंथ की निंदा करते हैं और दक्षिण एशिया में इससे निपटने के लिए उन्होंने सहमति भी जताई। ये थे पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी के शब्द। अगले साल होने वाले सार्क देशों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और चरमपंथ से जुड़े सभी मामलों पर दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उधर भारत के विदेश सचिव एस जय शंकर का कहना था,
Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial.
दोनों देशों ने मुंबई हमलों की सुनवाई में तेजी कैसी लाए जाए उस पर सहमति बना ली है। इसके तहत अतिरिक्त सूचना देने, जिसमें आवाजों के सैंपल का आदान प्रदान शामिल है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के शीर्ष अधिकारियों के बीच भी जल्द मुलाकात होगी और दोनों देशों में हिरासत में रखे गए मछुआरों को नावों सहित 15 दिनों के भीतर रिहा किया जाएगा। ये थे भारत के विदेश सचिव एस जय शंकर के शब्द। जहां एक और इस बैठक को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, वहीं ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या ये वक्तव्य कोई तैयारी के बाद पेश किया गया था। मैंने आज की मुलाकात पर दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और इस्लामाबाद से हारून रशीद को परिचर्चा में शामिल किया और सिद्धार्थ से सबसे पहले मैंने ये पूछा कि वे इस वक्तव्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं।
एक सफे का भी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन भारत पाक जो मुद्दे हैं इतने संवेदनशील होते हैं कि इस पे काम तो हुआ होगा 2-3 दिनों का कम से कम। पता नहीं किस स्तर पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुमकिन नहीं है कि जल्द से जल्द जो है एक स्टेटमेंट इस तरह से तैयार किया जाए। लेकिन एक रास्ता जो है दोनों नेताओं ने खोल दिया अपने देशों के लिए, और हालांकि उसमें स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन अभी तक जो इंडिया का स्टैंड रहा कि भाई बात नहीं करेंगे जब तक वायलेंस और दहशतगर्दी खत्म नहीं होता, और वो एक तरह से एक बाधा बन गया था, तो अब मोदी साहब उससे थोड़ा हट गए, लगता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
जी, तो आप इसे एक सकारात्मक कदम देखते हैं, हालांकि जो अब मुद्दा आपने उठाया उसे लेकर कांग्रेस भी कह रहा है कि सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न लिया है। आपको हारून साहब शामिल करना चाहेंगे परिचर्चा में। जो ये संयुक्त वक्तव्य जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें मुंबई हमलों का तो जिक्र है लेकिन समझौता ब्लास्ट पर कुछ नहीं कहा गया है, तो इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है?
यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया भी अगर आप देखें और बाकी जगहों पर भी, तो कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसकी मांग तो पाकिस्तान ने मान ली, जो ये टेररिज्म आतंकवाद से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान के मुद्दे हैं वो उसमें उस तरह हाईलाइट नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए। जैसे कि समझौता एक्सप्रेस का भी काफी अरसे से पाकिस्तान भी मांग कर रहा है कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं दिए जाएं, तो उसका जिक्र नहीं है। तो ये पॉलिटिकली काफी नवाज शरीफ के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान में इस पे आवाज उठे और काफी शोर मचे, लेकिन चूंकि अभी ये अभी बयान जारी हुआ है तो अभी डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ यही कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने, भारत ने तो अपनी मांगें पूरी करवा ली, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ग्रेस और डिप्लोमेसी ज्यादा शो की है इंस्टेड ऑफ बार्गेनिंग ऑन व्हाटएवर दे वर वांटेड।
तो पाकिस्तान में लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जो है इस मुद्दे पर बातचीत में अपने आप को ठीक तरह से बार्गेन नहीं कर पाया। सिद्धार्थ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि थोड़े दिन पहले ही लखवी के मामले पर पाकिस्तान के रवैये से खासा नाराज था भारत, और वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन ने जो विरोध किया था लखवी को लेकर, उस मुद्दे को भी जोर शोर से भारत ने उठाया था। तो ये जो पूरा आज का घटनाक्रम है, क्या लगता है कि भारत क्या अपने मुद्दे से पीछे हट गया है जैसे कि कांग्रेस भी कह रही है?
किसी भी सिचुएशन में अगर दो देश आपस में बात नहीं करते तो जाहिर है कि माहौल बिगड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें कही जाती हैं जिन पे बाद में जो है आपको मुकरना पड़ता है। तो सुषमा स्वराज जी ने शायद 10 दिन पहले या 1 महीने पहले कहा कि जब तक लखवी को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हिंदुस्तान बात नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसे स्टैंड्स लिए जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर डायलॉग जो है आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी हालात हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन है, दोनों साइड्स को ये पहचानते हुए आगे बढ़ने की प्रयत्न होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी साहब चले, कांग्रेस का एज ऑपोजिशन उनका एक तरह से फर्ज बनता है कि वो इस चीज को आलोचना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आलोचना ये होनी चाहिए कि आपने एक साल जाया क्यों किया। मतलब इस स्टेटमेंट में जो बातें हैं शायद 8 महीने पहले 9 महीने पहले हम उसको लिखवा के, हो सकता है कि भारत पाक गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है। आधा सेकंड बोलूंगा पाकिस्तान के बारे में कि नवाज शरीफ वापस जाके ये कह सकता है अपने लोगों को कि अभी तक मोदी का स्टैंड रहा कि मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो कम से कम बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया। और डिप्लोमेसी जो है ये विनर टेक्स ऑल या एक वन शॉट नहीं होता है। मतलब कि आपने एक बार फायरिंग गोली चला दी और बात खत्म। ये तो एक लंबा एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस की शुरुआत कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और ये जो उफा में जो स्टेटमेंट तय हुआ, मुझे लगता है कि ये शुरुआत आगाज एक प्रोसेस का शुरू का है और आगे कहां जाता है ये नवाज शरीफ और मोदी साहब उनकी अपनी पॉलिटिकल करेज पे डिपेंड करेगा।
जी, पॉलिटिकल करेज पे डिपेंड करेगा। लेकिन सार्क देशों का जो सम्मेलन होने वाला है अब उसके लिए मोदी जो है पाकिस्तान जाएंगे और 15 साल बाद किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की ये पाकिस्तान यात्रा होगी, तो ऐसे में ये यात्रा कितनी अहम हो जाती है सिद्धार्थ?
नहीं, ये तय था कि मोदी साहब अवश्य जाएंगे क्योंकि वाजपेयी साहब भी वहां जा चुके थे और सार्क के समिट्स मुसलसल हो रहे हैं। लेकिन अब उनका जाना एक नया मायना रखता है क्योंकि जो डायलॉग का प्रोसेस है अब एनएसए लेवल पे जो इसको स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरताज अजीज और दोवल साहब जब मिलेंगे तो एक दिशा अगर वो तय कर सकते हैं, एक रास्ता अगर वो तय कर सकते हैं और उस रास्ते पे ऑफिशियल लेवल पे बातें भी हो सकती हैं, तो उम्मीद है कि जब सार्क समिट का वक्त आएगा तो मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब एक महज एक औपचारिक मुलाकात की जगह में एक काफी गहरी मुलाकात है, गंभीर वहां पे डायलॉग कर सकते हैं क्योंकि 6 महीने की तैयारी तब तक हो चुकी हो।
जी हारून, आपको यहाँ शामिल करना चाहेंगे। आपने सिद्धार्थ की बात सुनी, उनका कहना है कि कुछ गंभीर निकल कर आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ राजनीति के साथ साथ सेना का भी दखल रहता है, तो क्या निकल कर आ सकता है?
नेर से बाद दोनों प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान की जमीन पर मिलेंगे, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की सेना काफी वोकल रही है जब भी इंडिया की पॉलिसी डिसाइड हुई है। तो अब ये भी देखना है कि वजीर आजम साहब ये जो वहाँ पर उफा में वादे करके आए हैं उस पर उनकी कितनी है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो यहाँ पाकिस्तान में स्टेट की तरफ से एलिगेशन लगना शुरू हो गई थी काफी संगीन किस्म की, कि इंडियन रॉ एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में करवा रही है, इन्वॉल्वमेंट है, कराची में इन्वॉल्वमेंट है और इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो ये स्टेट की तरफ से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। तो उसके बाद अब इस स्टेटमेंट में उसका कोई जिक्र ना होना नवाज शरीफ के लिए यहाँ बेचना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना यही है कि ये वापस आकर इसको किस तरह से सेल करते हैं और इनकी जो स्टेट मशीनरी है, जो ये नैरेटिव अब तक का बना रहे थे इंडिया के खिलाफ यहाँ पाकिस्तान में, उसको अब कैसे अनवाइंड कैसे करें।
तो पाकिस्तान और भारत ने दोबारा बातचीत शुरू करने को लेकर जताई सहमति और सार्क देशों के सम्मेलन के लिए पाकिस्तान जाएंगे नरेंद्र मोदी। परिचर्चा में शामिल हुए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और इस्लामाबाद से हारून रशीद। उधर उफा में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन की पूर्ण सदस्यता मिल गई है। रूस से निकलकर चर्चा करते हैं ग्रीस की। कर्ज संकट से उबरने के लिए ग्रीस के नए प्रस्तावों का फ्रांस और इटली ने स्वागत किया है, तो वहीं कुछ ने ग्रीस के प्रस्ताव पर संशय व्यक्त किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ग्रीस की योजना को गंभीर और विश्वसनीय बताया है। उधर यूरोप के शेयर बाजारों में आज उम्मीद की लहर दौड़ गई। पूरे ब्यौरे के साथ हरिता कांडपाल।
बेलआउट पैकेज पर समझौते के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के नए प्रस्तावों के बाद यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है। वहीं एलेक्सिस सिप्रास को ग्रीस की संसद से इन प्रस्तावों के लिए मंजूरी लेनी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के साथ समझौते के लिए आगे बातचीत की जाएगी। सूत्रों के अनुसार एलेक्सिस सिप्रास ने $60 अरब की मदद की मांग की है और ग्रीस के कर्ज पर दोबारा सोचने का प्रस्ताव किया है। एथेंस में संसद भवन में बैठक के लिए आए सांसदों की इन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। संस्कृति उपमंत्री निकोस ज़ाइडाकिस ने कहा कि हर किसी को संतुष्ट करने वाला समझौता कर पाना एक बड़ी चुनौती है।
ये दुविधा है, हमें दुराग्रही जर्मनी का सामना करना है जो उस बात पर चर्चा के लिए तैयार नहीं जिस पर दुनिया चर्चा कर सकती है। हमें देश के दूरदर्शी हितों के बारे में सोचना है। यूरोप अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यूरोप में ही हमारी ऐतिहासिक और भू राजनीतिक सीमाएं रहेंगी, लेकिन स्थितियां दम घोटने वाली हैं।
ये थे ग्रीस के संस्कृति उपमंत्री निकोस ज़ाइडाकिस के शब्द, लेकिन सरकार के अन्य मंत्री कुछ उम्मीद की किरण देख पा रहे हैं। मैसेडोनिया थ्रेस के उपमंत्री मारिया कोलियास ने कहा,
यह एक महायुद्ध की तरह है, लंबा और दुखदायी महायुद्ध,
और हमें लगता है कि जो कदम हम उठा रहे हैं उनसे यह खत्म होगा।
शनिवार को यूरोजोन के वित्त मंत्री ग्रीस के इन नए सुझावों का अध्ययन करेंगे और फिर रविवार को यूरोपीय संघ के सम्मेलन में इन पर चर्चा की जाएगी। इस बीच जर्मनी के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीस को कर्ज में छूट मिलना नामुमकिन है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने ग्रीस के ताजा आर्थिक प्रस्तावों को गंभीर और विश्वसनीय बताया है।
ग्रीस ने यूरोजोन में रहने के लिए अपना निश्चय दिखाया है, क्योंकि जो ताजा प्रोग्राम उन्होंने सुझाया है वो विश्वसनीय और गंभीर है। तो बातचीत दोबारा शुरू होगी, लेकिन प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ना होगा। फ्रांस का यही रवैया रहेगा ताकि एक सम्मानित समझौते पर पहुंचा जाए जो ग्रीस और यूरोप का सम्मान करता हो, क्योंकि हम सब एक हैं। वो कई वर्षों से संकट में हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि आर्थिक सुधार जरूरी है।
ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला के शब्द। अहम बात यह है कि एथेंस की तरफ से दिए गए नए प्रस्तावों में खर्च में कटौती, पेंशन में सुधार और टैक्स में बढ़ोतरी जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं, जिन्हें ग्रीस के लोग रविवार को हुई राय शुमारी में ठुकरा चुके हैं। नकदी की कमी के कारण ग्रीस में बैंक और व्यवसायी परेशान हैं। हेलेनिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन मिकोलस ने कहा है कि मौजूदा हालात में कंपनियों के लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
There have been businesses in various sectors over the last 10 days that have...
नकदी की कमी की वजह से पिछले 10 दिन से कई क्षेत्रों में व्यापार अस्थायी रूप से ठप पड़ा है। अगर यह अन्य 10 दिन या एक हफ्ते के लिए जारी रहा तो कई व्यापारियों के लिए यह आकस्मिक मृत्यु की स्थिति होगी। पिछले 5.5 साल से चल रहे इस गहरे संकट की वजह से 2,75,000 से ज्यादा व्यवसाय बंद हो चुके हैं।
ये थे हेलेनिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन मिकोलस के शब्द। ग्रीस के नए प्रस्तावों का लक्ष्य दिवालिया घोषित होने और यूरोजोन से ग्रीस के बाहर होने की संभावना को रोकना है।
ये थी हरिता कांडपाल।
बीबीसी इंडिया बोल।
व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत से पूरा मामला रहस्यमय हो गया है। क्या व्यापम घोटाले की जांच इसकी सबसे कमजोर कड़ी है? आम आदमी इस घोटाले से कैसे प्रभावित हुआ? 11 जुलाई के इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 बजे इन नंबरों पर मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-2-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
जब भी गुरुदत्त का जिक्र आता है प्यासा के हीरो विजय की छवि नजरों में कौंद जाती है। 1957 में रिलीज हुई इस फिल्म को टाइम पत्रिका ने दुनिया की 100 सर्वकालिक बेहतरीन फिल्मों में जगह दी थी। साहेब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद और कागज़ के फूल के नायक गुरुदत्त की 90वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले।
प्यासा फिल्म में मोहम्मद रफी की गाई साहिद लुधियानवी की इस नज्म को गुरुदत्त की जिंदगी का फलसफा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गुरुदत्त की अधिकतर फिल्मों के नायकों के रास्ते पथरीले हैं और वो लकीर के फकीर भी नहीं हैं। यूं तो गुरुदत्त का जन्म मैंगलोर में हुआ, लेकिन उनका बचपन कोलकाता में बीता और वो भी बहुत बदहाली में। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी याद करती है।
मैट्रिक होने के बाद उनको बहुत दिल था कॉलेज जाने को, मगर हम लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। वी वेर वेरी पुअर। माँ और पिताजी दे कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू कॉलेज, तो इसलिए उन्होंने एक नौकरी ली थी। वहाँ उनकी सिर्फ 30 रुपीज सैलरी थी एंड फर्स्ट सैलरी से इतना जनरस थे वो। उनके टीचर के लिए एक भगवत गीता दिया और हमारे पिताजी के लिए कुछ कोट लाया और माँ के लिए साड़ी, हमारे लिए फ्रॉक और आत्मा जी के लिए कुछ शर्ट, सब के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। तो उस वक्त की जनरोसिटी ही रिमेन्ड अंटिल द एंड। कितने सालों के बाद भी हमारे भाभी के लिए कुछ साड़ी या गहना कुछ कान का गोल्ड का कुछ खरीदते थे तो जरूर हमारे लिए खरीदते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। और जब हम बचपन में आत्मा जी और हम झगड़ा करते थे तो वो हमारे बाल खींचते थे, तो ये बीच में आके हमारा साइड लेते थे।
गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पुणे के प्रभात स्टूडियो से की। वहीं उनकी मुलाकात देवानंद से हुई बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं।
हमारे कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से मेरी कमीज गुरुदत्त के यहाँ और उनकी कमीज मेरे यहाँ पहुंचा दी, और मजे की बात यह है कि हम दोनों ने वो कमीज एक ही दिन पहन ली। जब मैं प्रभात स्टूडियो में घुसा तो उनकी नजर मेरी कमीज पर पड़ी। उन्होंने उसे गौर से देखा और पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? जब मैंने उनकी तरफ नजर उठाई तो देखा वो मेरी कमीज पहने हुए थे। हम दोनों को बात समझ में आ गई और हमने जोर का ठहाका लगाते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। हम जिगरी दोस्त बन गए। एक दिन बियर का ग्लास लड़ाते हुए उन्होंने वायदा किया, देव अगर मैं कभी निर्देशक बनता हूं तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। मैंने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया कि अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर तुम होगे।
देवानंद को अपना ये वादा याद रहा, और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी।
तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले।
बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात उभरती हुई गायिका गीता रॉय से हुई। धीरे धीरे उनका इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला किया।
जब भी इनकी शूटिंग और गीता जी की गाने का कुछ नहीं रहता था तो वो घर पे झूठ बोल के कहती थी कि हम लल्ली को मिलने को, मुझे लल्ली बुलाते हैं घर पे, मैं लल्ली को मिलने को जा रही हूँ। और हम लोग सुबह सुबह निकलते थे खंडाला, यहाँ वहाँ सब जाते थे। और उस वक्त राज खोसला जी हमारे साथ रहते थे क्योंकि ही वॉज चीफ असिस्टेंट गुरुदत्त जी के। राज जी पहले ही वॉन्टेड टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, उसलिए बहुत सुंदर गाना गाते थे। गीता जी और राज जी दोनों मिलके ड्यूएट गाना गाते थे जाते वक्त। हम लोग और भाई साहब, ये छोटा छोटा सा ढाबा रहता था, वहाँ से भजिया लेते थे, चाय पीते थे और जिलेबी खाते थे। उनके पहली लव लेटर्स एक्सचेंज करती थी मैं। आई यूज टू डिलीवर इन माटुंगा से दादर चल के, और कभी कभी वो शाम को गाड़ी नहीं लेकर आती थी तो मैं उनको छोड़ने को मैं चल के जाती थी उनके साथ।
गुरुदत्त को उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए तो जाना ही जाता है। डांस सीक्वेंसेस को जितनी खूबसूरती से गुरुदत्त ने हैंडल किया है कम लोगों ने किया है। गुरुदत्त पर किताब लिखने वाली नसरीन मुन्नी कबीर कहती हैं कि गुरुदत्त ने 15 साल की उम्र में उदय शंकर जैसे कलाकार से नृत्य की बाकायदा शिक्षा ली थी।
वो उदय शंकर जी के साथ काम किए थे, ट्रेनिंग किए थे कोरियोग्राफी में, तो वो डांस डायरेक्टर बनना चाह रहे थे। और इसकी वजह से जब वो खुद अपने फिल्म बनाए तो उनके जो गाने हैं और उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन है वो जिसे कहते हैं बहुत ही कैमरा को कोरियोग्राफ करते थे, जैसे कि किस तरह से क्लोजअप होना चाहिए, किस लाइन पे, कौन से गाने के लाइन पे और कैसे लाइटिंग होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं उनकी खासियत है, और मैं समझती हूँ कि ये खासियत जो है वो उदय शंकर की ट्रेनिंग की वजह से आया है। इसलिए जब आप कहीं पेंटर हो के फिर फिल्म बनाते हैं तो आपका जो विजुअल स्टाइल है वो पेंटिंग से कुछ ताल्लुक रहता है, और फिर जब आप डांस से आते हैं तो फिर आपका जो मूवमेंट होता है कैमरा का वो भी ताल्लुक होता है डांस के जरिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनका जो बैकग्राउंड है दैट रियली मेड हिज सॉन्ग पिक्चराइजेशन स्पेशल।
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
गुरुदत्त के सबसे जिगरी दोस्त थे कॉमेडियन जॉनी वॉकर। जब बलराज साहनी ने उन्हें पहली बार मिलवाया तो वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके लिए खास तौर से एक रोल लिखवाया, हालांकि तब तक बाजी आधी बन चुकी थी। एक बार गुरुदत्त और जॉनी वॉकर कोलकाता गए।
अब एक पुचके वाले की दुकान पे हम दोनों बैठ गए और पहले तो पुचके खाए, इतने में हुआ ये कि थोड़ी दूर पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो उधर से एक मालिश वाला निकला और मालिश वाले ने उस आदमी की मालिश करना शुरू कर दी और जनाब बड़ी स्टाइल में हाथ वाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने मुझे देखा, बोला जॉनी इसको देखो। मैंने देखा तो उन्होंने कहा मुझसे, भाई देखो स्टाइल इसकी पकड़ो लेकिन आवाज तुम अपनी रखो, वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालते हो ना। मैंने कहा कौन सी? अरे भाई जब तुम वो खटमल की दवा वाली, तो मैं समझ गया हाँ, तो बोले बस वो आवाज मेरे को चाहिए।
मालिश तेल मालिश चंपी,
सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए।
गुरुदत्त कभी कभी अपनी फिल्मों में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। गुरुदत्त के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी वहीदा रहमान याद करती हैं।
वो एक दिन शेव कर रहे थे और मूर्ति साहब के साथ शॉट का डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे, तो अचानक आवाज आई, उन्होंने इतनी जोर से अपना वो रेजर फेंका और कहा क्या करते हो यार मूर्ति, बर्बाद कर दिया मुझे। तो मूर्ति साहब एकदम परेशान, मैंने क्या किया, हम तो शॉट डिस्कस कर रहे थे। नहीं यार, तुमसे शॉट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूछ उड़ा दी। तो सब हंस पड़े जोर जोर से, तो क्योंकि तुम लोग हंस रहे हो, आज रात को शूटिंग है, मैं क्या करूं। तो फिर मूर्ति साहब ने कहा गलती आपकी थी, मेरी तो थी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, आप इस तरह कीजिए, दूसरी तरफ की भी मूछ शेव कर डालिए।
गुरुदत्त ने बहुत मन से आत्मकथात्मक फिल्म कागज के फूल बनाई लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उनके निजी जीवन में भी कड़वाहट आ गई। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली।
10 दिन पहले मिलने को गई थी तो उस दिन बहुत उदास थे, उनकी लास्ट स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही थी, बाहर फिर भी आएंगी, डायलॉग राइटर आप जानते हैं अबरार अल्वी, उनका वो खत्म होने के बाद कहने लगे चलो हम लोग खाना खाएंगे साथ में। तो हमने कहा हम तो खा के आए हैं, अभी बुरा लगता है कि आई शुड हैड लास्ट मील विद हिम, थोड़ा सा तो उनके साथ खाना चाहिए था। हमने कहा नहीं हम खा के आए हैं, मैं ऐसे ही बैठती हूँ आपके साथ। तो खाना खाए, फिर हमने कहा देखो हम इनवाइट करने को आए हैं, 10 अक्टूबर के दिन हमारे यहाँ एक जलसा हो रही है, म्यूजिक परफॉर्मेंस, और अब्दुल हलीम जफर खान तार बजा रहे हैं हमारे यहाँ, और लोग आएंगे आप जरूर आइए। तब हमको कहने लली हमको पार्टी को मत बुलाओ, मुझे पसंद नहीं लोगों को मिलने का, तुम्हें मालूम है तो मैं हमेशा अकेलापन नहीं पसंद करता हूँ, तो मैं आऊंगा एक दिन तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, मगर वो तो हुआ ही नहीं और वही 10 अक्टूबर की पास्ट भी।
उनकी मौत का कैफी आजमी पर इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने उस पर एक नज्म ही लिख डाली।
रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई, साखी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई, माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई।
मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बिछड़े सभी बारी।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आपको गुरुदत्त पर रेहान फजल की विवेचना कैसी लगी हमें ज़रूर लिखेगा, और आप इस विवेचना को दोबारा विश्व भारती यानी 8 बजे के कार्यक्रम में सुबह जरूर दोबारा सुन सकते हैं। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जाने का निवेदन स्वीकार कर लिया है। अगले साल वे सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। ग्रीस की सरकार में एक सुधार कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के सामने इसे पेश कर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन सुधारों में करों में बढ़ोतरी और पेंशन में बदलाव शामिल हैं, जिसके बाद फ्रांस और इटली ने ग्रीस के सुधार कार्यक्रम की सराहना की है। पोप फ्रांसिस ने बोलीविया में लोगों को संबोधित करते हुए कैथोलिक गिरजाघरों की तरफ से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि बोलीविया में अमरीका ने विजय और के दौरान यहाँ के लोगों पर जो जुल्म किए वो गलत थे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में ताज़ा खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक हेमंत कुशवाहा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।